ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को जो सुबह सुबह महावाक्य सुनाए, उन महावाक्यों पे अभी हम थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। ऐसे तो बाबा की एक अव्यक्त वाणी में इतनी धारणा की बातें होती हैं कि हम पूरा सप्ताह मनन करें तो भी वो कम पड़ी, लेकिन अभी हम कुछ जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स थी उनको एक बार स्मृति में लाएंगे। आज बाबा ने दो शब्दों के अंतर पर हमारा ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा एक शब्द है दो और एक शब्द है। बाबा ने कहा जब चलते चलते बच्चों में थोड़ी फोर्स कम हो जाती है और जब अपने किए हुए वायदे को भूल जाते हैं तो फिर दो शब्द यूज करने लगते हैं। जैसे संकल्प ये था कि मैं विजयी रतन हूँ या सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन बाद में जब शक्ति कम हो जाती है तो क्या कहते हैं, सफलता दो, विजय दो। तो बाबा ने कहा है शब्द शक्तिशाली है और जो दो दो शब्द है वो तो मांगने का शब्द, देने वाले दाता लेवता बन जाते हैं। तो वास्तव में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हम वरदान का स्वरूप बने। वरदान का स्वरूप क्या है, जो बाबा ने कहा वो मैं हूँ, मैं विजयी हूँ, मुझे विजय मांगनी नहीं है लेकिन मैं हूँ ही, मैं सफलता मूर्त हूँ ही। तो बाबा ने कहा बच्चों को इस कंट्रास्ट को समझना है और लेवता नहीं बनना लेकिन अपने स्वरूप में टिके रहना है। दूसरा बाबा ने जो मुरली में ध्यान खिंचवाया, बाबा ने कहा कि अभी पास्ट का व्यर्थ का खाता खत्म करो। तो हम देखते हैं कि जो बातें बीत गई उन बातों की जाने अनजाने स्मृति आती है और जिन बातों की स्मृति रखनी चाहिए वो बातें पीछे हो जाती है। इसी को बाबा ने व्यर्थ का खाता कहा। तो बाबा ने कहा इस खाते को अभी फुल स्टॉप लगाओ, फिनिश करो, ये व्यर्थ का खाता है। जो बीत गया उसको अगर हम याद करेंगे तो वर्तमान में उन्नति कैसे होगी। किसी व्यक्ति के पांव में पत्थर बंधा हो और उसे हम कहें कि तुम उड़ो तो वो उड़ेगा कैसे, क्योंकि जो पत्थर होगा वो उसे नीचे की तरफ खींचेगा। तो बाबा का कहने का भाव यही था कि जो पुरानी स्मृतियां हैं, बीती हुई बातें हैं, वो भी एक तरह से पत्थर की तरह ही हैं, जो हमें भारी कर देती हैं और उड़ने नहीं देती हैं। कुछ दिन पहले एक बहन ने मेरे से सवाल पूछा कि मेरे कुछ मित्र संबंधी, वो अभी कुछ समय से सेंटर पे रहने लगी है, उसने कहा मेरे कुछ मित्र संबंधी मुझे बुला रहे हैं, लेकिन पहले वो मुझे गालियां दिया करते थे, ज्ञान में चली होगी, ऑपोजिशन किया होगा, तो मुझे पूछा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैंने कहा देखो बाबा कहते हैं किसी के पास जाने का मतलब है उसको बाबा का संदेश देना, बाबा के गुणों की ज्ञान की अनुभूति कराना, अपने जीवन परिवर्तन का स्वरूप दिखाना, तो अगर तुम समझती हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ तो जाओ, बाबा की सेवा होगी। उसने कहा नहीं, मेरे को तो बार बार वही बातें याद आ रही हैं कि इन्होंने मुझे क्या क्या बोला था, इन्होंने मुझे क्या क्या बोला था। तो मैंने कहा फिर मत जाओ, क्योंकि वहां जाकर के तुम उनका कुछ भला नहीं करोगी, तुम्हारे अंदर भी नेगेटिविटी आएगी, उनके अंदर भी आएगी, ऐसे मेल मिलाप का फायदा क्या? इसलिए जाओ ही मत, जब देखो कि मैं मजबूत हो गई हूँ और मैं पास्ट को भूल गई हूँ और मैंने इनको माफ कर दिया है, तब उसके बाद जाना, उसका फायदा है। तो बाबा ने कहा पास्ट की जो बातें हैं, जो पास्ट का व्यर्थ का खाता है, उसको फिनिश करो। अब देखो पास्ट में तो सबके साथ बहुत कुछ हुआ होगा, किसी के मित्र संबंधी ने कुछ किया होगा, किसी के परिवार वालों ने कुछ किया होगा, किसी को कोई बीमारी आई होगी, किसी को और कुछ हुआ होगा, सबके पास व्यर्थ का पास्ट का बड़ा बड़ा खाता है। तो अगर हम उसको आज भी ढोते रहेंगे तो फिर ज्ञान में आने का फायदा क्या, भगवान से मिलने का फायदा क्या? इसलिए या तो हम उन्हें भूलें और माफ करें, वो भी हमारे लिए बंधन है, पांव की सांकल है, अगर वो स्मृति है तो उन्हें भूलें, उन्हें माफ करें। जैसे किसी ने कहा है कि अपने दुश्मनों को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें मित्र बना लो। तो वो अब्राहम लिंकन की बात सुनाते हैं ना, वो एक बार जब युद्ध हो रहा था तो अपने शत्रु के खेमे में भी चले गए और वहां जो घायल लोग पड़े थे उनकी भी सेवा करने लगे। तो किसी ने आके अब्राहम लिंकन को कहा, अरे इन शत्रुओं को तो खत्म करना है और तुम इनकी मलम पट्टी कर रहे हो। उसने कहा, इन्हें खत्म शत्रुओं को ही तो खत्म कर रहा हूँ, मलम पट्टी करके इन्हें दोस्त बना रहा हूँ, ये अपने शत्रु खत्म हो जाएंगे, ये मित्र बन जाएंगे। तो पास्ट में अगर किसी ने हमारा अहित भी किया तो उसको खत्म करने का तरीका क्या है? अब हम उनका इतना हित करें, इतना उनके लिए कल्याण भावना रखें, इतना उन पर परोपकार करें कि वो भी पिछली बातों को भूल जाएं और हम आपस में एक दो के सहयोगी बन जाएं। तो ये बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि अब उस पास्ट के खाते को खत्म करो, इसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, अपने आप पर मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी चिंतन शैली पर, अपनी स्मृतियों पर, विचारों पर, भावनाओं पर, वृत्तियों पर काम करना पड़ेगा, तब परिवर्तन होगा और तब हम बदले हुए रूप में उनको कुछ दे पाएंगे। फिर बाबा ने एक बात पर और अटेंशन खिंचवाया कि एक तो खुद को बहुत विशेष आत्मा समझो, ऐसे तो हम विशेष आत्मा हैं क्योंकि बाबा ने करोड़ों में से हम बाबा के बच्चे चुने हुए हैं। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कोटो में को, लेकिन को में भी को। तो कोटो में को तो हम 15-20 लाख जितने भी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उन को में भी मैं को बनूं, अर्थात विशेष आत्माओं में भी मैं विशेष आत्मा बनूं, ये लक्ष्य रखना है। तो बाबा ने कहा एक तो अपने आप को विशेष आत्मा समझो और दूसरा बाबा ने कहा दूसरे की विशेषताओं को देखो, किसी की भी कमी कमजोरी अवगुण को मत देखो। और उसके लिए बाबा ने कहा देखो वो व्यक्ति अपने अवगुण से दुखी हो रहा है और वो चाहता है कि मेरा ये अवगुण खत्म हो जाए और उस अवगुण को खत्म करने के लिए वो बहुत पुरुषार्थ कर रहा है। तो बाबा ने कहा जिस चीज से वो छूटना चाहता है उसको आप उठा रहे हो, उसकी फेंकी हुई चीज को आप उठा रहे हो, क्यों? दूसरे को जो गंदगी बुराई खराब चीज लग रही है उसे वो फेंक रहा है और आप उसे उठा रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। फिर बाबा ने कहा जो रॉयल घराने के बच्चे होते हैं ना, वो किसी की फेंकी हुई अच्छी चीज को भी नहीं उठाते, क्योंकि उनके मन में ये होता है मैं बहुत ऊंचे कुल का हूँ, ऊंचे घराने का हूँ, तो इसने ये जो खराब चीज फेंकी इसे मैं, ये बढ़िया चीज भी फेंकी पर फेंकी ना, तो मैं फेंकी हुई को क्यों उठाऊं? तो बाबा ने कहा आप कितने ऊंचे कुल के हो, कितने रॉयल बच्चे हो, तो किसी की कमी कमजोरी बुराई को क्यों उठाते हो? और बाबा ने ये भी कहा कि ये महापाप है। और फिर बाबा ने ये सावधानी खिंचवाई कि जब एक दो के साथ मिलते हो तो आपस में एक दो की विशेषताओं का, गुणों का चिंतन करो, लेन देन करो, एक दो को सहयोग दो। और बाबा ने कहा कि एक दो को अच्छी अच्छी बातों का भोग लगाओ और एक दो के गुणों की वाश धूप जगाओ। तो अब जब आप ये काम करोगे तो 63 जन्म भगत तुम्हारे सामने भक्ति मार्ग में ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ये अभी तुम बच्चे करो। और आज बाबा ने एक और बहुत सुंदर बात कही कि देखो दुनिया में कितनी मूर्तियां हैं, बहुत प्रकार की मूर्तियां हैं, भारत में तो मूर्तियों का अंत ही नहीं है, इतने मंदिर और बाजार में भी इतनी वैरायटी मूर्तियां चित्र सब बिकती हैं देवी देवताओं के। तो बाबा ने कहा बाबा तो आप बच्चों को चेतन में जीती जागती साक्षात मूर्ति बनी हुई देखना चाहता है। तो जब आप चेतन मूर्ति बन जाओगे ना तो ये जड़ मूर्तियां जो इतनी प्रकार की हैं ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। और बाबा ने कहा ये जो अनेक प्रकार के मंदिर हैं ये भी खत्म होकर के केवल एक ही बड़ा मंदिर बन जाएगा। तो वो बड़ा मंदिर क्या होगा, सारा भारत ही सतयुग बन जाएगा। सारे भारत में बड़े से मंदिर में चेतन में जीती जागती मूर्तियां चलती फिरती हर कर्म करती हुई दिखाई देंगी, तो वो मंदिर कितना सुंदर लगेगा। अभी के जो मंदिर हैं उनमें तो इस प्रकार की विचित्र मूर्तियां हैं, कहीं छोटी सी मूर्ति है दिखाई भी नहीं देती है, दर्शन करो तो समझ में नहीं आती मूर्ति कौन सी है, फिर फूलों से उसको ढक देते हैं, फिर चढ़ावे से प्रसाद से ढक देते, दर्शन करने जाओ कई कई मंदिरों में तो अंधेरा इतना ज्यादा होता है अंदर, केवल एक दिया जल रहा होता है, शायद लाइट जलाना अलाउ नहीं होता है, तो वहां फड़ फड़ के देखते रहो मूर्ति दिखती ही नहीं। लेकिन चेतन में जब मूर्ति बनेगी और ये सारा भारत मंदिर बनेगा तो सारी मूर्तियां एक जैसी होंगी, सुंदर सुंदर अच्छे से दिखने वाली। तो बाबा तो उस मंदिर के इंतजार में। तो बाबा ने कहा एक दो की गुण और विशेषताओं को देखो। फिर बाबा ने अगली धारणा की बहुत सुंदर बात सुनाई। बाबा ने कहा देखो बाबा बच्चों का जादू का मंत्र देता है, और जादू का मंत्र क्या है, बाबा की याद। ये एक ऐसा जादू का मंत्र है जिससे आप जो चाहो वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, सेकंड में फल प्राप्त कर सकते हो, और ये परमानेंट सिद्धि है, अल्पकाल की सिद्धि नहीं है। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा के बने ही, और हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया उसका आधार भी बाबा की याद है, और हम सब अनुभवी हैं कि बाबा की याद कैसे जादू के मंत्र का काम करती है, कैसे हम सबको सिद्धि स्वरूप बनाती है। हमें जितनी भी प्राप्तियां होती हैं वो याद से ही तो होती है, इसलिए वो जादू मंत्र है। जो दुनिया में काम नहीं हो पाता वो बाबा की याद से हो जाता है, तो जादू मंत्र ही तो हुआ, चमत्कार ही तो हुआ। और अगर आज की विज्ञान की भाषा में देखें, कंप्यूटर की भाषा में देखें, तो बाबा की याद कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है फोटोशॉप, जिन्होंने कंप्यूटर सीखा है वो जानते हैं। तो वो प्रोग्राम ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई फोटो है कोई चित्र है वो बिगड़ गया, उसका कलर फेड हो गया, या उस चित्र का कोई अंग भंग हो गया, या उस चित्र में कोई दाग धब्बा आ गया, तो उस फोटोशॉप में उसको जब रख करके उस पे काम करते हैं तो वो फिर से पहले जैसा बन जाता है, पहले से भी बढ़िया बन जाता है। हम उसमें नए रंग डाल सकते हैं, नए तरीके से उसमें शाइनिंग ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फोटो परिवर्तन करने का ये एक प्रोग्राम होता है। तो बाबा कहते हैं देखो वो तो जड़ फोटो है, लेकिन बाबा तो याद के द्वारा आप चेतन फोटो को बदल देते हैं। कितना बदल देते हैं, वास्तव में तो हमारा असली फोटो तो आत्मा का है, और आत्मा के भी जो कलर हैं वो सात, और वो अभी फेड हो गई, कोई कोई तो बिल्कुल उड़ गया है ही नहीं रंग की जगह। तो जब आत्मा में सातों रंग थे तो वो कितनी सुंदर थी, और अब जब कलर फेड हो गए कलर उड़ गए तो कैसी हो गई मूर्ति, भद्दी दाग धब्बे वाली। तो जब मेडिटेशन में बैठते हैं बाबा को याद करते हैं तो जैसे फोटोशॉप का काम चालू हो जाता है। बाबा के पास भी बहुत सुंदर ब्रश है, फोटोशॉप में ब्रश होती है वैरायटी प्रकार की, कोई रंग भरती है कोई मिटाती है कोई धब्बा हटाती है कोई नई चीज लिखती है तो बाबा के पास भी वैरायटी ब्रश, तो जो हमारा मूल स्वरूप था गुणों वाला, ज्ञान वाला, शक्तियों वाला, वो ब्रश काम करती है और आत्मा का रूप निखरता जाता है। अब फोटोशॉप में एक मिनट में काम नहीं होता है, बैठने वाले को थोड़ा बैठ करके बारीकी से काम करना पड़ता है। तो ये भी कोई एक दिन में रंग थोड़े भरे जाएंगे, आज रंग भरा कल फिर डिम हो गया, कर्म करते फिर भूल गए, फिर शांति खो गई, प्रेम खो गया, फिर बाबा के पास बैठते हैं, फिर बाबा रंग भरता है। तो ये काम चालू रहता है और ये बाबा ने गारंटी ली है कि ये काम चालू रहते 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 आखिर एक दिन बाबा संपूर्ण मूर्ति बना ही देंगे। तो हम बच्चों को ये देखना है कि मेरा ये जो मेरे ऊपर जो बाबा का एक कार्य चल रहा है ना, ये तीव्र गति से चले। इसलिए बाबा ने याद को जादू मंत्र का, सर्व सिद्धि प्राप्ति का आधार का। अगर थोड़ा टाइम ब्रश चलाएंगे तो थोड़ा रंग भरा जाएगा, लंबे समय तक ब्रश चलाएंगे तो अच्छे से बढ़िया रंग भरा जाएगा। इसलिए बार बार हमको बाबा की याद में बैठना है, थोड़ा भी टाइम मिले तो फिर बैठ जाओ, चलो बाबा रंग भरो। और मेडिटेशन में हम जैसा संकल्प करेंगे वैसी सिद्धि होगी। अब अगर हम ये संकल्प करके बैठेंगे कि बाबा मेरे में शांति का रंग भरे, मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, तो वो शांति का रंग भरना शुरू हो जाएगा और शांति भरती चली जाएगी। इसलिए बाबा ने ये भी कहा कि याद में साधारण रीति नहीं बैठना, लेकिन ये संकल्प करना कि मुझे कोई प्राप्ति हो, मुझे कोई अनुभूति हो, और जब प्राप्ति होती है तभी बार बार याद में बैठने का संकल्प आता है, जब प्राप्ति नहीं होगी तो याद में नहीं बैठेंगे। इसलिए याद को हम अनुभव करें कि ये सचमुच जादू का मंत्र है, चमत्कारी शक्ति है, परिवर्तन शक्ति है, और हम अपने इस चार्ट को बढ़ाएं। फिर बाबा ने कहा माया से बचने का साधन है दुनिया से न्यारा बनना और बाबा का प्यारा बनना। जो जितना दुनिया से न्यारा बनता है उतना ही भगवान का प्यारा बनता है। लौकिक दुनिया में भी कहती हैं कि भगत का और जगत का आपस में बैर होता है। जो लोग भक्ति करती हैं उनका संसार से पटता नहीं है। तो वास्तव में जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं उनको भी ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। लेकिन न्यारा बनने का अर्थ क्या है? न्यारा बनने का अर्थ है देह से न्यारा बनना, कर्म बंधन से न्यारा बनना, और कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से न्यारा बनना। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कर्म व्यक्ति को इतना नहीं बांधता जितना कर्म का चिंतन बांधता है। कर्म करने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उस कर्म को हमने किया, उस करने के वक्त जो विचार चले वो बाद तक भी आते रहेंगे, ऐसे किया था ऐसे किया था। तो कर्म तो पूरा हो गया आधे घंटे में, लेकिन उसका चिंतन वो सारा दिन चलता रहा। तो काम पूरा करके भी हम उससे न्यारे नहीं बने। किसी व्यक्ति से मिले, मिलने का काम तो 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट 20 मिनट का था, लेकिन मिलते समय उसके हाव भाव को देखा, उसकी बातचीत को सुना, उसका चिंतन सारा दिन चलता रहा। उसने ऐसे बोला था, उसने ऐसे किया था। तो वो मिला तो 10 मिनट, लेकिन हम सारा दिन उसकी स्मृति को ढोते रहे। तो ये क्या हुआ? हम ना कर्म से न्यारे हुए, ना मनुष्यों से न्यारे हुए, ना जगत से न्यारे हुए, तो बाप के प्यारे कैसे बनेंगे? तो वास्तव में दुनिया से न्यारे होने का अर्थ ये है कि अपना काम किया और न्यारे हो गए, समेट लिया, बुद्धि को डिटैच कर लिया। भले शरीर से वहीं रहेंगे लेकिन बुद्धि को उसमें नहीं फंसाना। मालूम है कि ये इतनी बार का देखा हुआ, इतनी बार का किया हुआ, ये सब कुछ पुराना है, इसमें कुछ भी सार नहीं, और इसमें इतने जन्मों से बुद्धि फंसाई तो क्या प्राप्ति हुई, और ही बुद्धि कमजोर हो गई, उलझ गई, कर्म बंधन बंध गए, रिश्ते कड़वे हो गए। तो अब हम ऐसा करें कि जितनी जरूरत है उतना काम निकाल लें और उसके बाद बुद्धि को बाबा में लगाएं, जो बुद्धि को भरपूर करे, सुख दे, आनंद दे, प्रेम दे, वही तो उसको लगाना है ना। तो बाबा ने कहा संसार से न्यारे बनो और बाबा के प्यारे बनो। और फिर बाबा ने ईश्वरीय नशे की बात कही। बाबा ने कहा दुनिया में भी जो लोग नशा करते हैं तो वो भूल जाते हैं और अपने आप को क्या से क्या समझती है, लेकिन उनके नशे में तो खर्चा भी होता है, नशा एक बार किया फिर उतर भी जाता है। और फिर बाबा ने कहा नशा उनके शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन ये ईश्वरीय नशा तो ऐसी चीज है जिससे फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। और इस ईश्वरीय नशे में अगर आप हमेशा रहो तो देखो माया आपके सामने आ नहीं सकती, और इस ईश्वरीय नशे में कर्मातीत बनना कितना सरल, क्योंकि ईश्वरीय नशे में जब काम करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, तो कर्तव्य की हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि नशे में है ना। जब नशे में होते हैं तो निशाना सामने दिखाई देता है, मुझे ऐसा बनना है। तो बाबा ने कहा हमेशा ईश्वरीय नशे में रहो तो कर्मातीत अवस्था बिल्कुल नजदीक नजर आएगी। बाबा ने ईश्वरीय नशे की बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई। कहते हैं एक बार एक राजा था, तो वो बहुत ही नम्र चित्त था, उदार दिल था, और अपने साथियों को, सेवकों को, सहायकों को बहुत उमंग देता था, किसी के सिर पे हाथ फिरा देता था, किसी से हाथ मिला लेता था, ईगो नहीं रखता था। तो उसका एक दरवाजे पे खड़ा होने वाला गेट कीपर जिसको कहते हैं, दरबान जिसको कहते हैं, राजा जब महल से बाहर जाता तो उस दरबान को बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोलता था, कभी उसकी पीठ थपथपा देता, शाबाशी देता, हाथ मिला लेता। तो दरबान को तो नशा चढ़ गया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए देखो इतना बड़ा राजा भी मेरी पीठ थपथपाता है। तो एक बार कोई छुट्टी का दिन था तो वो दरबारी ने कोई नशा पी लिया, उस जमाने में जो नशा होता होगा, आज जैसे नशे तो नहीं थे लेकिन फिर भी जड़ी बूटियों के नशे होते होंगे, और नशा जब पी लिया तो नशे में तो व्यक्ति के होश नहीं रहते। तो जहां उसने नशा पिया वहां बैठे बैठे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि राजा मेरा रिश्तेदार है, राजा तो मुझे बहुत प्यार करता है, राजा तो मेरे से हाथ मिलाता है, मेरी पीठ थपथपाता है, राजा तो मेरा रिश्तेदार है। तो किसी ने सुन लिया, और जिसने सुना उसको बहुत बुरा लगा, तो वो दरबार में जाके राजा से मिला और उसने सारी बात राजा को सुना दी कि तेरा वो दरबारी वहां बैठे बैठे ऐसे बोल रहा है सबके बीच में। तो ऐसे तो राजा बहुत अच्छा था, लेकिन इस बात में उसको भी अपमान महसूस हुआ। कहते ना कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, तो उसको भी लगा मैं इतना बड़ा राजा और ये साधारण सा दरबारी, और ये मुझे कहता है कि राजा मेरा रिश्तेदार, इसकी इतनी हिम्मत। तो राजा को थोड़ा अहंकार आया, गुस्सा आया, अपमान महसूस हुआ, और उसने अपने दो सेवकों को भेजा कि उसको पकड़ो और मेरा फरमान उसे सुना दो कि कल सुबह आपको फांसी की सजा दी जाएगी। तो सेवकों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसको राजा का समाचार सुनाया, तो उस बेचारे का तो नशा उतर गया उसी समय। उसको चिंता लग गई कि मैं क्या करूं, अब कैसे बचूं। तो जहां वो रहता था वहां एक कोई बहुत अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, तो उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को जाके प्रार्थना की कि मैं एक बहुत भारी मुसीबत में फंस गया हूं और आप मुझे इससे निकालो। तो उसने कहा, पूरी बात सुनाओ। उसने सुनाई तो उसने कहा, देख भाई, मुसीबत से तो निकालूंगा, लेकिन अपनी दो चीजों पे नियंत्रण रखना। एक तो दोनों ही काम मुख के हैं, खाया भी मुख से और बोला भी मुख से। सारा अपराध इस एक इंद्रिय का है, मुख रूपी इंद्रिय का। इसी से खाया, नशा पिया, और फिर जो बोला वो भी इसी से बोला। तो इस पर नियंत्रण की अगर तुम गारंटी देते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ना, नियंत्रण शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जिसमें कंट्रोलिंग पावर होती है वो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाता है। जैसे ही कंट्रोलिंग पावर छूटी तो कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और ये मुख तो डबल दुर्घटना करता है, खाने की भी और बोलने की भी। इसलिए मुख पर तो डबल नियंत्रण चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है, मैं वायदा करता हूं, मैं ये दोनों ही काम जीवन में कभी नहीं करूंगा, अर्थात गलत खाऊंगा भी नहीं और गलत बोलूंगा भी नहीं। इनके कारण आज मेरा जीवन मुसीबत में फंसा है, पर तुम मुझे इस बार बचा लो। तो उसने कहा, ठीक है, सेवकों को कहा इसे ले जाओ राजा के पास और मैं भी आता हूं। तो राजा के पास ये व्यक्ति भी पहुंच गया और इसने जाके राजा को कहा कि इसका अपराध क्या है। तो राजा ने कहा, इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया, देखो नशे में ये क्या बोल रहा था सबके बीच में बैठ करके कि राजा मेरा रिश्तेदार, राजा मेरा रिश्तेदार। तो उस व्यक्ति ने सारे धर्म शास्त्र और ये सब चीजें पढ़ रखी थी। उसने कहा, महाराज, मैंने इतने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, इतनी कथाएं पढ़ी, और उन कथाओं में मैंने बहुत नशे की बातें पढ़ी। आपको पता है, जब मीरा को नशा चढ़ा, रूहानी नशा चढ़ा, तो मीरा क्या कहती थी? मीरा कहती थी कि वो जो भगवान है, सांवरिया है, वो तो मेरा पति है। कहां वो त्रिलोकी नाथ और कहां मीरा, साधारण इंसान। लेकिन नशे में वो उसको कहती थी कि वो तो मेरे साथ नाचता है, मेरे साथ रहता है, मेरा सब कुछ है। और जब प्रहलाद को नशा चढ़ा, एक राक्षस का बेटा, तो उसने भी कहा कि वही मेरा पिता है, वही मुझे खिलाता है, पिलाता है, मेरी रक्षा करता है। और जब ध्रुव को अलौकिक नशा चढ़ा तो ध्रुव ने भी कहा कि मैं भगवान की गोद में बैठूंगा, जब तक वो मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाएगा तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा, मुझे दिखे और फिर गोद में बिठाए। तो कहां भगवान की गोद और कहां साधारण सा बालक ध्रुव। लेकिन देखो, उसने भी कह दिया मैं भगवान की गोद में बैठूंगा, कितना उसको नशा चढ़ा। और जब अनुसुईया को रूहानी नशा चढ़ा तो उसने तो भगवान को बेटा बना लिया, छोटा बच्चा बना करके और पालने में झुला दिया। और जब द्रौपदी को नशा चढ़ा तो उसने कहा, भगवान मेरा भाई, कहा द्रौपदी और कहा भगवान। अर्जुन ने भी कहा भगवान मेरा सखा। तो महाराज ये जो रूहानी नशा होता है ना, इस रूहानी नशे में आदमी को मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है। पर आप ये देखो कि जब भगवान को उन्होंने रिश्तेदार बनाया, किसी ने पिता बनाया, किसी ने माता बनाया, किसी ने भाई बनाया, तो भगवान तो नाराज नहीं हुआ। भगवान नाराज हुआ क्या कि तुम कुछ भी नहीं हो और मुझे अपना रिश्तेदार बना रहे हो? भगवान तो खुश हो गया और वो तो कहता है मुझे अपना रिश्तेदार बना लो, सब कुछ बनने को तैयार है वो तो। तो महाराज ये भगवान को तो नहीं जानता, पर इस दुनिया में बड़े से बड़े आप हो इसकी नजरों में। तो जैसे भगत ने भगवान को रिश्तेदार बनाया नशे में, ऐसे इसने भी नशे में आपको रिश्तेदार बना लिया, इसमें बुराई क्या है? तो राजा का जो अहंकार था ना, वो डाउन आ गया। जब भगवान नाराज नहीं होता तो मैं क्यों नाराज होता हूँ? तो राजा ने उसको छोड़ दिया और उसके बाद उस व्यक्ति को कहा कि मुझे इस रूहानी नशे का ज्ञान दो, ये क्या चीज होती है। तो पंडित जी ने उसे जो अपने पास ज्ञान था वो उसको भी सिखाया। तो आज बाबा ने रूहानी नशे की बात कही, ये रूहानी नशा चढ़ता है तो कर्मातीत बनना सरल है, असंभव बातें संभव नजर आती है, मुश्किल काम सरल नजर आते हैं, जो चीज कभी सोची नहीं थी वो चीज भी सामने नजर आती है। ये नशे में ऐसी ताकत होती है। और फिर बाबा ने कहा संगम युग है कमाई का युग, हर सेकंड हर पल कमाई जमा करनी है। लौकिक दुनिया में अगर किसी व्यक्ति की एक दिन कमाई ना हो तो कितना उदास हो जाता है, एक दिन दुकान बंद करनी पड़े, कर्फ्यू लग जाए तो कितनी चिंता होती है। आज तो मेरी 1500 की कमाई गई, किसी मजदूर को किसी दिन काम न मिले, बेचारा बैठा रहे, उसको भी चिंता लगती है रात को रोटी कैसे खाऊंगा। तो दुनिया में हर दिन की कमाई की इम्पोर्टेंस। तो बाबा ने कहा आप बच्चों की तो हर सेकंड हर पल हर घड़ी हर श्वास कमाई। संगम युग का बाबा ने कहा था 5 मिनट भी 5 बरस के बराबर, आपने 5 मिनट नहीं गमाए लेकिन 5 बरस की कमाई गमा दी। इसलिए हर पल देखो कि मेरा संकल्प कैसा है, मेरी भावनाएं कैसी हैं, मेरी वृत्तियां कैसी हैं, मेरा चिंतन कैसा है, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी सोच से मेरी कमाई जमा होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे इस बोल से मेरी कमाई जमा होगी, मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो सूक्ष्म 3 इंद्रियां मन बुद्धि और संस्कार, सर्वप्रथम उन तीनों की चेकिंग चाहिए और तीनों के ऊपर अंकुश चाहिए। ये जो बाहर वाली इंद्रियां हैं ये तो फिर अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन भीतर वाली सूक्ष्म है, पहले वो धोखा देती तो फिर बाहर वाली भी धोखा दे देती। इसलिए बार बार हमको अटेंशन चेक एंड चेंज, बार बार हम चेक करें मन किधर गया, क्यों गया, ये बात मैं क्यों सोच रहा हूँ। ऐसे नहीं एक घंटा सोचने के बाद फिर ध्यान में आया कि अरे मैं एक घंटा क्या सोच रहा था, आधा घंटा 15 मिनट, बाबा ने कहा इतना समय गंवा करके फिर होश में आए तो जो गमाया वो वापस तो नहीं लौटेगा ना। इसलिए बार बार दूसरों को नहीं लेकिन अपने को देखना है। अपने को देखेंगे तो अपनी कमाई जमा होगी, दूसरे को देखेंगे तो ना दूसरे को फायदा ना खुद को फायदा। अपनी कमी अपनी कमजोरी, दुनिया में देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की कमजोरी देखने के पैसे मिलते हैं। एक तो सेक्रेटरिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, उनके पास अगर कोई आए और अपनी समस्या बताए तो वो उसकी कमी बताते हैं, भाई तुम्हारे में ये कमी है, इसके कारण तुमको तनाव रहता है, इसके कारण तुमको नींद नहीं आती। तो कमी बताने के उसको पैसे मिलते हैं, इसलिए वो कमी बताता है। और एक जैसे मैं अपने कार्य के बारे में सोचती हूँ, किसी किताब में कोई गलती है, किसी की लिखत में कोई गलती है, तो उस गलती को जब हम पकड़ते हैं तो वो भी फायदे की चीज है, उससे हमको कमाई होती है, फायदा होता है। दुनिया में जिसका ये प्रोफेशन होता है उसको पैसे ही दूसरों की गलतियां पकड़ने का मिलता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन हम किसी मनुष्य की कमियां देखते हैं, उसमें भला हमारी क्या कमाई है? उसमें तो कोई कमाई नहीं। तो बाबा ने कहा, अपनी कमी देखोगे तो कमाई होगी, दूसरे की कमी देखोगे तो ना उसको फायदा ना आपको फायदा। तो संगम युग में हर घड़ी हर श्वास हर संकल्प सफल करना है। और फिर बाबा ने लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनाई मुरली में, खुशी का खजाना हमेशा भरपूर रहे, और वो भी सदा काल की खुशी, अल्पकाल की खुशी नहीं। अल्पकाल की खुशी तो साधनों से मिलती है, लेकिन साधनों में तो आत्मा उलझ जाती है, साधन उस पर हावी हो जाते हैं। साधन ऐसी चीज है जो की कमाई को चट कर जाती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, ब्राह्मण जीवन में दो बातों का ध्यान रखो, एक तो मान शान के अधीन नहीं होना और एक साधनों के अधीन नहीं होना। तो मान शान से भी अल्पकाल की खुशी मिलती है, साधनों से भी अल्पकाल की खुशी मिलती है। थोड़े दिन के बाद वो साधन पुराना होगा, फिर कहेंगे और नया साधन आए, और नई चीज आए, चीज की खुशी तो थोड़ी देर के लिए। इसलिए वास्तव में हमें चीजें नहीं जीतनी, साधन नहीं जीतने, लेकिन लोगों का दिल जीतना है हमारी सबसे बड़ी जीत। चीजों पर नहीं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जीत लोगों के दिलों पर हो, हम लोगों के दिल जीते, हम ऐसे बने जो लोगों के दिलों में हमारी जगह बने। तो बाबा ने कहा, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सदा काल की खुशी हो। सदा काल की खुशी किसको होगी? जो भरपूर होगा। और भरपूर कौन होगा? जिसको सबकी दुआएं मिलेंगी। दुआएं किसको मिलेंगी? जो सच्चा होगा, सादा होगा, अंदर बाहर एक होगा, सरल चित होगा, सहयोगी होगा, परोपकारी होगा, निस्वार्थ होगा। जब हम साधनों में फंस जाते हैं तो ये सारे गुण चट हो जाते हैं, साधन के पीछे सारी शक्ति लग जाती है और आत्मा की उन्नति रुक जाती है। तो बाबा ने कहा, सदा काल की खुशी, संगम युग है, मौजों का युग, अल्पकाल की खुशी नहीं, लेकिन सदा खुश नसीब आत्मा। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर वरदान हम बच्चों को दिया, मन और बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा सिद्धि स्वरूप बनने वाली समर्थ आत्मा भाव। इसमें बाबा ने पहली बात कही, मन और बुद्धि की एकाग्रता। कई बार हम कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है। होता क्या है कि मन तो बाबा की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्धि मन के साथ नहीं है, दोनों की दिशा अलग अलग है। बाबा के स्वरूप को सामने देखें और मन उसके ऊपर चिंतन करे तो दोनों एक हो गए। लेकिन मान लीजिए बुद्धि में कोई और बात स्मृति में आ रही है, कोई और दृश्य, कोई और पदार्थ, कोई और व्यक्ति का फोटो सामने आ रहा है, और मन कहता है मैं भगवान के गुण गाऊं, बाबा की कीर्ति गाऊं, बाबा के गुणों का अनुवाद करूं, ये पॉसिबल ही नहीं है, एक इधर और एक इधर, तो यात्रा तय नहीं होती है, हमारी रूहानी यात्रा बीच में अटक जाती है। दोनों एक साथ जब रूहानी यात्रा के यात्री बनते हैं तब हमारी रूहानी यात्रा सफल होती है, तब हमें योग में अनुभूति होती है। तो बाबा ने कहा मन और बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सिद्धि स्वरूप बनने वाले, तब हमें योग में सिद्धि मिलती है। हम क्या चाहते हैं योग में? अपने पुराने संस्कार मिटाना चाहते हैं या कमजोरी मिटाना चाहते हैं, या हम अपनी मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, या हम कोई उलझन सुलझाना चाहते हैं, या हम मनसा सेवा करना चाहते हैं, किसी आत्मा को स्काश देना चाहते हैं, किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? योग का भी तो हमारा उद्देश्य है ना, निर उद्देश्य तो योग में नहीं बैठते ना, कोई ना कोई लक्ष्य लेके बैठते हैं, मुझे क्या करना है, मेरे व्यर्थ संकल्प मिटे, मेरा जो कर्म खाता है वो चुकतू हो, या मुझे किसी प्रश्न का उत्तर मिले, बाबा से मुझे कोई समाधान करवाना है, या बाबा से किसी पर्टिकुलर रिश्ते की अनुभूति करनी है। कोई लौकिक रिश्ता बार बार स्मृति में आता है, मुझे उसकी जगह बाबा के साथ उस रिश्ते की अनुभूति करनी है, या मुझे विदेही अवस्था, निराकारी अवस्था, बीज रूप अवस्था, ज्वालामुखी अवस्था का अनुभव करना है, रू रिहान करनी है, क्या करना है मुझे, मेरा क्या लक्ष्य है, मैं योग में क्यों बैठा हूँ? तो बाबा ने कहा जब मन और बुद्धि की एकाग्रता होगी तो आप सिद्धि स्वरूप बनेंगे, जिस उद्देश्य को लेकर के आप योग में बैठे हैं वो आपका पूरा होगा। आप किसी से मिलने जाना चाहते हैं, आप उसको अपनी बात बताना चाहते हैं, आप पहले योग में बैठ करके भूमिका तैयार करते हैं, उस आत्मा को वाइब्रेशन देते हैं, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाते हैं और फिर आपको सिद्धि मिलती है। तो मन बुद्धि की एकाग्रता से आपने जो होमवर्क किया उससे आपको सिद्धि मिल गई। अब सीधा जाकर के किसी को कोई बात सुनाएंगे वो इतनी प्रभावकारी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा जब दोनों एकाग्र होके काम करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो आपको फल मिलेगा, और जब हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं तब हम समर्थ बन जाते हैं, कमजोरी खत्म हो जाती है, आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं, मेरा हर संकल्प सिद्ध है, मैं जो चाहता हूँ वो पूरा होगा, मैं बाबा से जो प्राप्ति करना चाहता हूँ मुझे वो प्राप्ति हो रही है। तो जब ऐसी सिद्धि होती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, मेरा मार्ग ठीक है, मेरी साधना ठीक है, मेरा प्रयास ठीक। जब नहीं होती है तब मन डावाडोल होता है, पता नहीं संकल्प तो किया था पूरा नहीं हुआ, फिर कमजोरी आती। तो बाबा ने कहा जितना जितना सिद्धि स्वरूप बनेंगे उतना उतना समर्थ आत्मा बनेंगे। समर्थ आत्मा ही बाबा का कार्य संपन्न कर पाएंगे। तो हम सब बाबा के बच्चे समर्थ आत्मा हैं। मन और बुद्धि मिलकर के जो काम करेंगे संस्कार वैसे ही बन जाएंगे, और बार बार जब हम इस एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो संस्कार उसी रूप में डल जाएंगे। अभी संस्कार जो डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में, फिर वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी, फिर वो ढल जाएंगे उसी रूप में, हमारी मेहनत खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया, अपने मन और बुद्धि दोनों को साधो। पुराने जमाने में जो घोड़े होते थे उन्हें पहले साधा जाता था, एक सर्कल बना करके उसके ऊपर उस घोड़े को घुमाया जाता था, घूमते 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 वो उस सर्कल पर ऑटोमेटिक घूमने लगता था। तो मालिक कहता था ये सद गया, भागदौड़ नहीं करेगा, छलांग नहीं लगाएगा। तो उस सधे हुए घोड़े को लोग अपने काम में लाते थे। साधना शब्द इसी से बना है, साधना अर्थात मन को साध लेना, मन को पेट बना लेना, मन को अपने अनुकूल बना लेना। तो जब हम इस तरह से मन और बुद्धि दोनों को साध लेते हैं तो हमारी साधना सफल हो जाती है। फिर इसी से सिद्धि स्वरूप शब्द बना है, सध गए तो सिद्धि मिल गई, जब तक सधेंगे नहीं तो सिद्धि दूर रहेगी। तो इस वरदान पे हम काम करेंगे और बाबा के समर्थ स्वरूप बच्चे बनेंगे। ओम शांति।
चो